आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मरांग पोंगा के पास आईईडी ब्लास्ट में जख्मी सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल शहीद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दुख। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, परिसीमन को सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीमित करना निष्पक्ष और न्याय संगत कार्य नहीं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विधायकों की शिकायत पर नल जल योजना में गड़बड़ी की जांच का दिया भरोसा, कहा अनियमितता पाई गई तो होगी कार्रवाई। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी उपायुक्तों से अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और वज्रपात से हुई क्षति की अधियाचना 2 दिनों के भीतर भेजने का दिया निर्देश। और रांची के जेएससी स्टेडियम में 30 नवम्बर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना अंतर्गत मरांग पोंगा के पास कल हुए आईडी ब्लास्ट में जख्मी सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए। इस घटना में सब इंस्पेक्टर मंडल के अलावा हेड कांस्टेबल पार्थ प्रीतम डे भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया था। उल्लेखनीय है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी के ब्लास्ट होने से यह हादसा हुआ। इधर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआरपीएफ जवान सुनील कुमार मंडल के इलाज के दौरान निधन पर गहरा दुख जताया है। वहीं घायल जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि परिसीमन को सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीमित करना निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं हो सकता है। विधानसभा परिसर में बात करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि पहले भी परिसीमन को लेकर प्रयास किया गया, लेकिन आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें घटने के कारण हंगामा के बाद स्थगित करना पड़ा।
पहले भी ये प्रयास हुआ था और आज मिश्र जब सीटें हैं वो घट रही थी, इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ और ये पोस्टपोन भी हो गया। जो घटनी थी अब चर्चा में आएंगी बातें और चर्चा में क्या आएगा उसके बाद स्थिति अवगत करेंगे।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शनिवार को नल जल योजना को लेकर कांग्रेस विधायकों ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद को विभागीय आंकड़ों में गड़बड़ी की जानकारी दी, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। इसके बाद पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच कराने का भरोसा दिया।
राजेश जी को बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की अकेले योजना नहीं है महोदय, 50-50 है। 50% केंद्रांश है तो 50% राज्यांश है। जो माननीय तीनों सदस्य के द्वारा जो हस्ताक्षरी है उनके द्वारा जो कहा जा रहा है जो सरकार के आंकड़े हैं वो गलत है, तथ्यों से परे है। तो मैंने महोदय इस पर हम जांच करवा लेते हैं और जांच करवा करके हम माननीय सदस्यों को और सदन को भी अवगत कराएंगे।
गौरतलब है कि कोलेबीरा से कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी, विधायक राजेश कच्छप और सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना का लाभ नहीं मिलने की बात कही।
आपने जो आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा ही गलत है और इन लोगों ने कहा है कि जो आपको जो रिपोर्ट आया है इतने घरों में जलापूर्ति शुरू हो गई है। तमाम माननीय सदस्यों का मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, केंद्र सरकार की योजना है। विगत दिनों आपने कहा कि भाई पूरा पैसा हमको नहीं मिल पाया है, पैसा की कटौती की गई है, लेकिन जो आंकड़ा दिखा रहे हैं उन लोग भी संतुष्ट नहीं है। मैं
दुमका के उपायुक्त ए दुड्डे ने ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि जिले के 14% शिक्षक ई विद्या वाहिनी पर अपनी उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। ई विद्या वाहिनी पर बच्चों की उपस्थिति बनाने की दर और भी खराब है। उपायुक्त ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को सबसे कम उपस्थिति वाले शिक्षकों को चिन्हित कर उन्हें स्पष्टीकरण करने और दोषी पाए जाने पर निलंबित करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों से अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और वज्रपात से हुई क्षति की अधियाचना 2 दिनों के भीतर भेजने का निर्देश दिया है, ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से अनुग्रह अनुदान जल्द उपलब्ध कराया जा सके। मंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्तों को राहत कार्यों में तेजी लाने और क्षति का भौतिक एवं आर्थिक आकलन शीघ्र पूरा करने को कहा गया है। मंत्री ने कहा कि प्रभावितों को मुआवजा शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जागरूक एवं शत प्रतिशत लाभुकों का ई केवाईसी को लेकर जामताड़ा जिले में जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जागरूक एवं शत प्रतिशत लाभुकों को ई केवाईसी को लेकर जामताड़ा जिले में जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजशेखर कुमार ने बताया कि जागरूकता पखवाड़े के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को दी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक करने के साथ लाभ लेने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
चक्रधरपुर मंडल में विकास कार्य को लेकर ब्लॉक के कारण 3 ट्रेनें रद्द रहेंगी। टाटानगर बरकाकाना टाटानगर पैसेंजर ट्रेन 24 और 25 मार्च को रद्द रहेगी। वहीं हटिया टाटानगर मेमू ट्रेन आज और कल रद्द रहेगी। इसके अलावा टाटानगर हटिया मेमू ट्रेन 24 और 25 मार्च को रद्द रहेगी। यह जानकारी रेलवे ने शनिवार को दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लाभुकों को चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय समिति ने कुल 143 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की। सरायकेला खरसावां से राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद के लिए 10 युवक युवतियों का चयन किया गया है। हजारीबाग पुलिस ने जिले के ओरिमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कार्तिक माइनिंग कंपनी में फायरिंग और वाहनों को क्षति पहुंचाए जाने के मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और दुमका जिले के दर्जनों गांव में बच्चा चोरों के आने की अफवाह तेजी से फैली है। दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें, ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई भागों में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार कल से मौसम साफ होगा, वहीं अगले 3 से 4 दिनों में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि की संभावना है। और अब खबरें खेल जगत से। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई ने नवंबर में होने वाले दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का शेड्यूल जारी कर यह जानकारी दी। 2024-25 राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के चौथे दिन कल रांची में ओडिशा, हरियाणा और मिजोरम ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल की। वहीं कोलकाता में इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा, जबकि चेन्नई में दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची बंद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने झारखंड आंदोलनकारी के आश्रितों को ही नौकरी और आरक्षण देने के सरकार के फैसले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, जज यशवंत वर्मा की जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट की समिति। दैनिक भास्कर ने 24 और 25 मार्च को बैंकों में हड़ताल टलने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, केंद्रीय अनुदान में भेदभाव पर जारी होगी रिपोर्ट। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मंत्री चमरा लिंडा के हवाले से लिखा है, 1 माह के भीतर अनुसूचित जाति आयोग का होगा गठन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मरांग पोंगा के पास आईईडी ब्लास्ट में जख्मी सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल शहीद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दुख। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, परिसीमन को सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीमित करना निष्पक्ष और न्याय संगत कार्य नहीं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विधायकों की शिकायत पर नल जल योजना में गड़बड़ी की जांच का दिया भरोसा, कहा अनियमितता पाई गई तो होगी कार्रवाई। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी उपायुक्तों से अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और वज्रपात से हुई क्षति की अधियाचना 2 दिनों के भीतर भेजने का दिया निर्देश। और रांची के जेएससी स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।